नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। इटली के खूबसूरत शहर पुगलिया में 13 से 15 जून के बीच G7 शिखर सम्मेलन होना है। ये शिखर काफी अहम समय में हो रहा है क्योंकि दुनिया कई संकटों से जूझ रही है। एक तरफ जहां यूक्रेन से रूस का युद्ध जारी है तो दूसरी ओर इसराइल गाजा पर बम बरसा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन और ब्रिटेन के ऋषि सुनक जैसे नेता शामिल होंगे। खास बात यह है कि सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है, जो कि इटली के लिए रवाना हो गए हैं। शिखर सम्मेलन का एजेंडा वर्तमान परिस्थितियों और अन्य वैश्विक चुनौतियों के आधार पर है। 2023 की तरह भारत सहित कुछ गैर G7 देशों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। ऐसे में शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर नजर डालना काफी अहम है। G7 शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक शिखर सम्मेलन में 6 प्रमुख वर्किंग सेशंस के माध्यम से विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन और विकास से लेकर मध्य पूर्व, यूक्रेन, लगातार हो रहे माइग्रेशन, हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा, अफ्रीका, भू मध्य सागर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऊर्जा पर आमंत्रित राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सत्र अहम मुद्दे होंगे। G7 ग्रुप की बात करें तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं। इस समय में इटली इस ग्रुप का अध्यक्ष है। इटली ही इस वर्ष शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। G7 सदस्य देश वर्तमान में ग्लोबल GDP का लगभग 45% और दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बता दें कि भारत इस गुट का मेंबर नहीं है, लेकिन एक बार फिर उसे आमंत्रित किया गया है। G7 देशों के इस गुट में जापान के अलावा कोई भी एशिया का देश नहीं है। आर्थिक आधार पर बने इस गुट को लेकर चर्चाएं ये भी हैं कि वैश्विक स्तर पर बदलती आर्थिक हैसियत के चलते G7 का स्वरूप क्यों नहीं बदला जाना चाहिए। मिडल ईस्ट के देश कुवैत में 40 भारतीय मजदूरों की मौत से हर कोई स्तब्ध रह गया। बुधवार को कुवैत के मंगाफ में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और उस आग की चपेट में 40 भारतीय मजदूर आ गए। ज्यादातर मजदूर तमिलनाडु और केरल के रहने वाले थे। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पीड़ित के परिवारों को 2,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया है। कुवैत में इस बार जो आग की घटना हुई है उससे हर कोई हैरान है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मिडिल ईस्ट के देशों में भारतीय लोगों की स्थिति काफी खराब है। खासतौर पर जो मजदूर हैं वो सिर्फ पैसों के लालच में कुवैत और दूसरे देशों में जा बसते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी बदतर हालात में रहने को मजबूर दिखते हैं। एक आंकड़ा बताता है कि पिछले 2 सालों में अकेले कुवैत में 1400 भारतीयों की मौत हो चुकी है। यहाँ भी ज्यादातर मजदूर क्लास के आदमियों ने अपनी जान गंवाई है। कुवैत में जो भारतीय दूतावास है उसे भी 2021 से 2023 के बीच में 16,000 शिकायतें मिली हैं। ये सारी शिकायत उन भारतीय मजदूरों की हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें ना समय पर सैलरी मिलती है और ना ही उन्हें ठीक से रहने के लिए कोई जगह दी जाती है और कई प्रकार के शोषण भी उनके साथ किए जाते हैं। इस साल फरवरी में भी भारत के सदन में विदेश मंत्रालय की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि कुवैत में 2022 से 2023 के बीच में कल 731 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। वहां भी 708 अकेले भारतीय थे। अगर थोड़ा और पीछे चला जाए तो कोरोना काल के दौरान 2020 में और 2021 में भी हजारों भारतीय मजदूरों की मौत हुई थी। 2014 से 2018 के बीच तो आंकड़ा 2,932 तक दर्ज किया गया। अब ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि कुवैत में मजदूरों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर खराब स्थिति और कम संसाधनों के बीच में मजदूरों को रहने को मजबूर किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में कुवैत में 9,00,000 भारतीय मजदूर हैं। हैरानी की बात यह है कि कुवैत की अर्थव्यवस्था जो इस समय आगे बढ़ रही है उसमें भारतीयों की भूमिका सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर कुल आबादी की 21% भारतीय जनसंख्या है। इसके बावजूद भी भारतीय मजदूरों के साथ कुवैत में काफ़ी ख़राब व्यवहार किया जाता है। वहाँ के मजदूर अपनी आप बीती में बताते हैं कि उन्हें ना समय पर सैलरी दी जाती है और ना ही ठीक से रहने की व्यवस्था मिलती है और उनके साथ बदसलूकी तक होती है। आरोप तो यहाँ तक है कि कुवैत के स्थानीय लोग भी इन मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। वो लोग ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। जो कंपनियां इन मजदूरों को कम रेट में हायर करती हैं कई बार उनकी तरफ से पासपोर्ट तक जब्त कर लिए जाते हैं। इसके ऊपर एक ही रूम में 15 से 20 मजदूरों को ठूस दिया जाता है। इस समय कुवैत में बंदरगाह के पास कई ऐसी बिल्डिंग मौजूद हैं जहां पर सुरक्षा के लिहाज से कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। खतरा लगातार मंडराता रहता है, लेकिन फिर भी भारतीय मजदूर को तय समय से भी ज़्यादा घंटे मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब ऐसी ही एक घटना में 40 भारतीय मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक सवाल सभी के मन में आता है कि अगर कुवैत में हालात इतने ख़राब हैं, वहां पर लगातार मजदूरों की मौत हो रही है, फिर भी उनकी संख्या कम होने के बजाय बढ़ती क्यों जा रही है। अब इस सवाल का जवाब छिपा है कुवैत की सैलरी मैनेजमेंट में। मिडिल ईस्ट का ये देश भारतीय मजदूरों को ज़्यादा पैसे देने के लालच देता है। भारत में एक दिहाड़ी मजदूर को जितनी सैलरी मिलती होगी उससे ज़्यादा पैसे देने का दावा किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मजदूर को कुवैत में महीने का 27,000 रुपये मिलते हैं, वहीं अगर उसे कोई दूसरे काम आते हों, चाहे वो गैस कटर हो, तो 40,000 से 50,000 के बीच में भी वो महीने का पैसा कमा सकता है। इसी सैलरी की वजह से हजारों मजदूर हर साल भारत छोड़ कुवैत चले जाते हैं और वहाँ पर ख़राब स्थिति के बीच में भी जिंदगी चलाने की कोशिश करते हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।